तो अभी अगर यहाँ किसी ने दिया है प्रश्न, पर अगर डायरेक्ट भी पूछे तो अच्छा है। कोई भी प्रश्न, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, स्वास्थ्य हो सके तो हेल्थ से रिलेटेड भी चलेगा, कोई भी प्रश्न, पर स्वास्थ्य से रिलेटेड सबसे लास्ट में, पहले ज्ञान और योग से रिलेटेड। कोई भी कोई भी कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न, जो कॉमन प्रॉब्लम है सबका, ऐसे प्रश्न पूछो कि जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, वो प्रश्न हो थोड़े, जिसकी मतलब जिसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है। जब भी आत्माएं शरीर छोड़ती है, जब भी आत्माएं शरीर छोड़ती है और अतृप्त इच्छाओं के साथ शरीर छोड़ती है, बहुत सारी वासनाओं के साथ शरीर छोड़ती है, दुर्भाव के साथ शरीर छोड़ती है, बदले के भाव के साथ शरीर छोड़ती है, या उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है, ऐसी आत्माएं जब शरीर छोड़ती है, या जिसका देह में बहुत ज्यादा आसक्ति है, ऐसी आत्माएं तुरंत शरीर को प्राप्त नहीं करती है, तुरंत शरीर को प्राप्त नहीं करती है। जैसे गर्भ में एक आत्मा है, एक एक व्यक्ति है जिसने शरीर छोड़ा, उस आत्मा गई बाहर अपने संपूर्ण सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर अर्थात वाइब्रेशंस, और वो जाके दूसरे गर्भ में स्थित होती है। परंतु ये जो प्रोसेस है, आत्मा अपने योग्य गर्भ को चुनती है, और जब इन इच्छाओं के साथ बहुत सारी, जैसे किसी के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अपराध हुआ, और वो आत्माएं शरीर छोड़ती है अचानक या इस तरह से, तो वो भटकती रहती है बहुत समय तक, उनको तुरंत शरीर नहीं मिलता है। दो प्रकार की आत्माएं भटकती रहती है, एक तो श्रेष्ठ आत्मा, एक तो एकदम निकृष्ट आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा किस लिए? क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा को श्रेष्ठ गर्भ चाहिए। ऐसे योगी योगी माँ बाप, उसको भी थोड़ा ढूंढना पड़ता है, जो महानतम योगी है, संपूर्ण योगी है, ऐसी आत्मा कहाँ जाएगी? उसके लिए तो ऐसा गर्भ चाहिए, ऐसे माँ बाप चाहिए जो बहुत श्रेष्ठ है, वो विकार वाले नहीं है, विकार में गए खाली संतानोत्पत्ति के लिए बस, और कोई लक्ष्य नहीं था, कोई सुख, प्लेजर, एंजॉयमेंट, ये सब के लिए नहीं। तो ऐसी पर ये जो नीचे वाली आत्माएं हैं, ये भटकती रहती है। अब ये जो आत्माएं हैं, भटक रही है, ये सबसे ज्यादा अटैक उन आत्माओं पर करती है जिनकी देह में आसक्ति है, क्योंकि ये आत्माएं उनमें प्रवेश कर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती है, जो उस देह में पूरी नहीं हो सकी। एक दूसरा, ये आत्माएं अपना कार्य उनके द्वारा करना चाहती है, अगर कोई बदला लेना है किसी से वो भी करना चाह सकती है। दूसरा, यदि हमने ही उस आत्मा को सताया है तो वो हमसे ही बदला लेने आ सकती है। तीसरा, चौथा, हो सकता है कि वो आत्मा उस पर्टिकुलर घर से या उस पर्टिकुलर स्थान से संबंधित है, अभी वो लोग वहां नहीं रहे, परंतु उस स्थान से उसका बहुत लगाव है, उस स्थान से बहुत ज्यादा लगाव है, तो उस स्थान को छोड़ती नहीं वो आत्मा, और उसकी कुछ इच्छा है कि यहां कोई न रहे, जो भी आती है उसको भगा देती है वहां से। ऐसे असंख्य कारण हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अगर ऐसा है तो सबसे पहले इसकी एक ही विधि है, योग की शक्ति को बढ़ाना है, योग को पावरफुल करना है, क्योंकि ये जो आत्माएं हैं उन शरीरों में प्रवेश करती है जो कमजोर है। शक्तिशाली आत्मा के सामने ये सब चीजें कभी नहीं आ सकती। बाइबल में एक जगह वर्णन है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ उतरता है एक स्थान पर, वहां एक व्यक्ति होता है, उसके शरीर में 20 आत्माएं प्रवेश होती है, लीजन ऑफ सोल्स, लीजन मतलब अनेक, बाइबल में शब्द है अ लीजन ऑफ सोल, अ लीजन ऑफ स्पिरिट्स इन दैट मैन। तो वो जो व्यक्ति होता है पागल जैसा करते रहता है, भाग रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लोग तो उसको पत्थर ही मारते हैं, लोगों को क्या पता उसको क्या हो रहा है, बाहर से तो पागल ही दिखता है ऐसा आदमी, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, कुछ करता है कुछ करता है, कभी बाल खींचता है, कभी अपने आप को मारता है, खरोंचता है, कुछ भी करते रहता है। अब जीसस क्राइस्ट एक योगी है, जैसे जीसस उसको देखता है वो व्यक्ति को बुलाता है और उसके सामने आता है और नीचे गिर जाता है और वो उसके सर पर हाथ रखता है और वो सारी आत्माएं निकल के, वहां पे बहुत सारे भेड़ और जानवर होते हैं, उन सब में चली जाती है, ऐसा उसमें वर्णन है। और वो सारे भेड़ जानवर सब पागल हो जाते हैं, जोर से दौड़ते और समुद्र में कूद के सब मर जाते हैं। फिर वो भेड़ बकरियों का मालिक आता है कि मेरी भेड़ बकरियां क्या हुआ, वो दूसरी स्टोरी है। तो यहां दिखाया है कि जितनी योग की पावर है तो कोई भी आत्मा, कोई भी भूत प्रेत किसी और की आत्मा हमें अटैक नहीं कर सकती। क्या करना है, हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो, भय का यदि संकल्प है, डर का यदि संकल्प है तो और ज्यादा वो भयभीत करेगी। ये जो डर है, ये डर ही मारता है हमको, वो चीज नहीं मारती, डर उसका मारता है। जितना ज्यादा डर, जिसने उसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया उसके लिए कुछ नहीं है, कोई डर ही नहीं है, कहीं पे भी जा सकता है। पर जिसके मन में पहले से ही भरा हुआ है कि यहां ये शमशान घाट में इस बंगले में भूत प्रेत है, तो और ही ज्यादा डराएंगे वो। वो जो डर है और वो जो भय है, इसका मूल भी है, एक ही कारण है कि बहुत ज्यादा देहाभिमान है हमारा, उस अपनी इस देह से बहुत लगाव है। इसके लिए एक जो अभ्यास जो सिखाया जाता है, देह जैसे अपना जलते हुए देखना, जैसे हम मृत्यु हो गई है, अग्नि संस्कार कर रहे हैं, ये भी एक सूक्ष्म अभ्यास है। दूसरा, जैसे डर के लिए एक स्त्री होती है जिसको रोज रात में एक स्वप्न आता है, उस स्वप्न में वो भाग रही है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी काली छाया है, राक्षस की तरह उसका पीछा कर रही है, वो भाग रही है भाग रही है भाग रही है और वो काली छाया पीछे है पीछे है, और उसका रोज एक ही स्वप्न, और उठती है तो धड़कन बड़ी हुई, धड़ 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 धड़, और इतना भय इतना भय इतना डर, उसको समझ में नहीं आता ये क्या है, रोज स्वप्न। एक दिन ऐसा होता है फिर वही स्वप्न उसको दिखता है, वो भाग रही है पीछे से वो खाली छाया आ रही है, और वो ऐसी जगह खाई के पास पहुंच जाती है कि अभी आगे जाना संभव नहीं है, तो वो पीछे मुड़ के नीचे गिर जाती है और वो काली छाया एकदम उसके ऊपर आती है। तो वो पूछती है तुम कौन हो, वो काली छाया कहती है मुझे क्या पता तुम्हारा स्वप्न है, मुझे क्या पता तुम्हारा स्वप्न है, मतलब ये जो है सब इमेजिनरी फियर्स है बहुत सारे। एक दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति है, ठीक है, अब वो कहता है कि मैं बहुत दारू पी लेता हूं ना, तो मुझे सारी जगह सांप ही सांप नजर आते हैं। लोग उसको समझाते अरे वो सांप झूठे है, पर वो कैसे मानेगा, वो कहता है वो मुझे पता है, पर मैं क्या करूं, जब मैं पी लेता हूं तो वो सारे सांप ही नजर आते हैं। लोग उसको ट्रीटमेंट करते पर होता ही नहीं कुछ भी, सांप उसको दिखते ही, और डरता है बहुत सांपों से। तो वो खुद ही एक दिन एक इलाज करता है, वो एक पिंजरा लेता है जिसमें नेवला होता है ना, मुंगूस, उसमें भर अपने पिंजरे में, और वो लेके घूमता है सब जगह, क्योंकि वो नेवला होता है ना, वो मारता है सांप को। तो लोग उसको पूछते ये क्या है, वो कहता है ये मुंगूस है, नेवला है, किस लिए, वो कहता है वो जो सांप दिखते है ना उनको मारने के लिए। तो लोग कहते वो सांप झूठे है, वो कहता है ये नेवला भी झूठा है। एक भय है उसको खत्म करने के लिए एक इमेजिनेशन को खत्म, नए इमेजिनेशन को क्रिएट किया गया। तो क्या करना है, एक अभ्यास में बताता हूं। हम रात को जब सोते हैं, ये हमारा बिस्तर है, बेड है, ठीक है, इसमें 7 संकल्प लेने हैं, 7 संकल्प। ये हमारा सिर है, ये पैर, ठीक है, ये बेड है। अब यहां पर 7 अंगरक्षक तैनात करने हैं बेड पर, और वो 7 संकल्प होंगे, ठीक है। जैसे मैं सोई, मेरे सिर के पास एक जैसे सिपाही खड़ा है, एक संकल्प, एक सोमान, मैं निर्भय आत्मा हूं। एक संकल्प यहां खड़ा कर देना सोते समय, जैसे वो अभी रक्षक है, वो संकल्प के साथ सोना, मैं निर्भय आत्मा हूं कहते ही यहां पर जैसे कोई एक अंगरक्षक जैसा खड़ा हो गया है। दूसरा इधर, मैं अनासक्त आत्मा हूं, मुझे किसी से कोई आसक्ति नहीं है। इधर तीसरा, इधर बीच में बैठ के, मैं बेहद का वैरागी हूं, वैराग से परिपूर्ण आत्मा हूं। और वैरागी को कौन सा भय? इधर नीचे कहीं पर भी कोई भी संकल्प ले सकते हैं, पैरों के एक बाजू में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। फिर उस तरफ पैरों के पास, मैं निर्मोही आत्मा हूं, मुझे किसी से कोई मोह नहीं। ये अलग प्रकार के संकल्प है थोड़े, कि जिस वे हमको एकदम डिटैच कर देते हैं संसार से, किसी से कोई लेना देना नहीं, एक जगह ले लेना, मैं संपूर्ण साक्षी आत्मा हूं। ये मास्टर सर्वशक्तिवान जहां लिया वहां आप ले सकते हैं, मैं शिव शक्ति हूं, संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा मैं हूं, इस संसार में मेरे से अधिक शक्तिशाली ना कोई व्यक्ति है ना कोई परिस्थिति है, परिस्थिति से बड़ा मैं हूं, दूसरी आत्माओं से बड़ा मैं हूं, शक्तिशाली हूं। एक और संकल्प ले सकते हैं, मैं अष्टशक्तिधारी दुर्गा हूं। ये सात संकल्प, ये हमने उदाहरण दिए, आप ऐसे दूसरे संकल्प निर्माण कर सकते हैं, परंतु फिक्स्ड वही संकल्प, बेड के पास, सिर के पास वही संकल्प, राइट हैंड के एक तरफ वही संकल्प, लेफ्ट हैंड में, और ऐसा एक कवच तैयार करना और फिर जाना सोने के लिए। एक दूसरा, अपना जो बेड है जहां सोते हैं उस बेड को भी सकाश देना और उस कमरे को भी सकाश देना, और वो जो पूरा सेंटर है, अमृत वेले कभी कभी बाबा का हाथ पकड़ के अव्यक्त बाप दादा को पूरे अपने सेंटर पर घुमाओ अंदर। एक दूसरा, बाबा का हाथ पकड़ के सेंटर की परिक्रमा करो। एक ऐसे हमको सूक्ष्म अभ्यास करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सारे जो है अदृश्य है, जो भी आवाजें या कहते हैं जिसको हम एक्चुअली इविल स्पिरिट शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, उस शब्द में निगेटिव भाव है बहुत ज्यादा, उसकी चर्चा करना अर्थात वातावरण में निगेटिविटी फैलाना। ये जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं हम, इविल स्पिरिट, ये इविल शब्द बोलना, हमारे मुख से ये शब्द भी ना निकले, इसके लिए हम खुद कभी इसके बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि आपने अभी प्रश्न पूछा इसलिए बोल रहे, बाकी इविल स्पिरिट यहां है, इविल स्पिरिट वहां है, नहीं भी होंगे ना तो आ जाएंगे, हम आमंत्रण कर रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं। ये शब्द बहुत निगेटिव है। बाबा को कभी देखा कमेंट करते हुए? इतनी बड़ी डायमंड हॉल में बाबा बैठे हुए, अचानक कोई माता चिल्लाती है तो बाबा बोलते हैं कौन चिल्लाया देखो जरा, कभी बोला आज तक? ऐसे बिल्कुल निग्लेक्ट, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक बार तो एक माता भाग के स्टेज पे चढ़ गई थी, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत खेलपाल है बाबा के लिए। बाबा कभी उसके बारे में बोला कभी ऐसा? इविल स्पिरिट शब्द मुरलियों में आया, ऐसे अव्यक्त वाणियों में? ये हम लोग उसके ऊपर इतना सोच सोच के हमने ये स्वीकार क्यों किया? यहां है, स्वीकार करोगे तो है, नहीं करोगे तो नहीं है। कैसे आ सकती है? अरे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हमारे सामने कौन सी आत्माएं आ सकती है? पर पहले ही हम डरे हुए हैं, और ये जो डर है ये बहुत खतरनाक है। जैसे दिखाया है, एक साधु बैठा रहता है, वहां से काली छाया जाती है, वो पूछता है ए तुम कौन हो? वो कहती है मैं प्लेग हूं, प्लेग की बीमारी। आदेश आया है सामने का जो गांव है ना, एक 500 लोगों को मारने का। प्लेग की बीमारी कहती है काली छाया कि मैं सामने के गांव में 500 लोगों को मारने जा रही हूं। तो साधु कहता है ठीक है जाओ। एक मास के बाद वो काली छाया वापस जाती है, गांव में प्लेग आ जाता है, मारता है 500 लोग जो भी है। तो साधु पूछता है तुमने कहा था कि 500 लोग को मारना, यहां तो 1000 लोग मर गए प्लेग। वो काली छाया कहते मैंने मारा तो 500 को ही है, बाकी सारे डर से मर गए। तो ये जो डर है इसको पहले हटाना है, और डर का मुख्य एक कारण है इस देह से बहुत ज्यादा आकर्षण, आसक्ति, लगाव, इस देह को जलता हुआ देखना, अपना ही जैसे संस्कार करना, ये अभ्यास करना है। इसके लिए इसमें ज्यादा जाना नहीं, अगर है भी तो शक्ति को बढ़ाना है। वो आ कैसे सकता है? सबसे पहला वो आ इसलिए रहा है बातों से, चर्चा से। हमने जैसे उस व्यक्ति को सांप ही सांप दिखते थे, सांप थे नहीं पर उसको दिखते थे, बाकी किसी को नहीं दिख रहा। इसके लिए कहा ना, जो अगर मानता है, स्वीकार करता है, उसके लिए वो चीज है, जो स्वीकार ही नहीं करता उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए कौन सा डर।
नहीं, ये कैसे हमको मालूम हो कि है क्या नहीं
हमारा? वो उसमें जाना क्यों है आपको?
नहीं, वहम है या सच है?
नहीं, वो उसमें क्यों जाना है? अच्छा चलो, है भी और नहीं भी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो अदृश्य आत्मा है, बेचारी भटक रही है और हमको उनको सकाश देनी है। हम सकाश, सारी आत्माओं को सकाश देना है। ये शब्द भी कहना कि इविल स्पिरिट को सकाश देना है, इसमें भी निगेटिविटी समाई है। वो जो शब्द है वो मुख से उच्चारण ही ना हो। भटकती हुई आत्मा, ये शब्द प्रयोग कर सकते हो, भटकती हुई, ये थोड़ा सा ठीक है, एक्सेप्टेबल कि यहां भटकती हुई आत्मा, परंतु है पर उसका चर्चा क्यों? ये हमारे विश्वास की कमी को दिखाता है। फिर हम अगर उसमें ज्यादा इस डिटेल्स में जाएंगे ना, तो इसकी डिटेल में चर्चा करने वाले हजारों लोग व्यर्थ की चर्चा करने वाले बैठे हैं, और आपको नई नई बातें सुनाएंगे, फिर बोलेंगे तांत्रिक के पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके पास, ये सब भी करते हैं लोग, सब करते हैं, बिलीव भी करते हैं, माताएं करती है, अरे शिव बाबा का ज्ञान इतना बड़ा और तांत्रिक के पास जा रही है सेंटरों पर। हमारे पास तो क्या बताओ, हम कितनी बहनें मधुबन में सेंटर, देश विदेश से आती है, कहती है थोड़ी बात करनी है, बात करो तो एक ही बात बताती है। एक माता है, वो हमारे पर ऐसे कर दिया, जब से उसने किया सारे स्टूडेंट्स चले गए। ये बातें बहुत कॉमन है, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। लौकिक में तो, संसार में तो ये करनी, ब्लैक मैजिक, ऊपरी हवा, बाहरी हवा, ये अलग अलग नाम है उसके, जादू टोना। अगर एक दिन सेंटर खोला दरवाजा और सामने लींबू में सुई और कुंकू, तो क्या करोगे बोलो, क्या करोगे बोलो? ये एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया आपको कि दरवाजा खोला, सामने देखा एक नींबू है, हल्दी लगी है या कुछ लगा हुआ है, उसमें सुई है, हाँ क्या शुरू हो जाता है? अच्छा, नींबू का शरबत भी बन सकता है उससे। जो बिलीव करेगा उसके साथ होगा। वही मैं कह रहा हूं, जिसने स्वीकार किया उसके साथ होगा। जैसे एक व्यक्ति था जिसको ज्योतिषी ने बताया बराबर एक साल के बाद जुलाई तारीख, जुलाई मास में एक तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसने इतना उसको स्वीकार कर लिया और अपना समेटना चालू कर दिया, सारे बिजनेस को समेट लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये बेटे को, ये बेटी को, सब 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 बिल्कुल, इतना अपनी पूरी तैयारी कर ली। जैसे जैसे दिन समीप आ रहा है पूरा मन उसका तैयार है, और जैसे ही एक तारीख जुलाई मास, वो मर गया। अगर उसको बिलीव करो तो होगा, अगर मानो ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये बात, और चलो दूसरा प्रश्न, ये टॉपिक को चेंज करो, पावरफुल टॉपिक लाओ थोड़े ज्ञान योग से संबंध। चिट्ठी, अच्छा ये वही है इविल, سننا ہی نہیں پہلی بات تو. بھوجن کے بارے میں صبح بھی کہا تھا. آواز نہیں, اتنے سندیش نہیں لا رہی ہے. اور یہ جو سندیش لانے کی پرکریا ہے یہ کیسی ہے, سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے. اس کی اوتھینٹیسٹی, ستیتا کتنی ہے. یہ جو سندیش لانے کی پروسیس ہے, اگر یہاں پہ تین لوگ بیٹھے, ٹھیک ہے, تین لوگ بیٹھ کے ان کو یہ درشیہ دکھایا گیا کہ یہ بہنیں بیٹھی ہے, اور ہم نے کچھ کہا نہیں, ہم لوگ تین لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں سے ہم کہیں اور گئے, اور پھر وہاں ہم کو کہا گیا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اس کا ورنن کرو, تو میں جو ورنن کروں گا وہ دوسرا ہوگا, دوسرا ویکتی جو ورنن کرے گا وہ دوسرا ہوگا, تیسرا ویکتی جو ورنن کرے گا جو اس نے دیکھا ہے وہ الگ ہوگا. اب کیسا کیسا ورنن ہوگا, میرا جو گیان ہے اس آدھار سے میں اس کا وستار کروں گا, جو میرا پورو گیان ہے اس آدھار سے جو میں نے دیکھا اس میں بہت ساری اپنی چیزیں ملاؤں گا. دوسرا ویکتی ہے وہ اس نے دیکھا وہ اپنے گیان کو اس میں تھوڑا سا ڈالے گا, تیسرا ویکتی ہے اس کا پہلے سے ہی بہت سارا دوسرا گیان ہے وہ اس درشٹیکون سے اس درشیہ کو دیکھے گا. اگر پانچ منٹ کوئی دھیان میں جاتا ہے اور پھر پندرہ منٹ انوبھو اگر سنگوئی سناتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہاں لائٹ اور وہاں لائٹ اور یہاں ٹم ٹم اور وہاں ٹم ٹم, سب سے پہلی بات تو آج کی تاریخ میں ایون دادی گلزار جی بھی سندیش کہاں لا رہے ہیں, نہیں لا رہے. ایک بار ایسا ہوا کسی سینٹر پر, سب جانتے ہوں گے یہ تو پرسدھ بات ہے, ایک پترکار گیا جھوٹا کہانی بنا کر کہ میری پتنی نے شریر چھوڑا ہے, سندیشی نے سندیش لایا جبکہ اس کی کوئی پتنی نے شریر چھوڑا ہی نہیں تھا. سندیشی نے سندیش لایا کہ بابا نے اس کو یاد کیا ہے ابھی وہ دوسرا شریر لے گی وغیرہ وغیرہ, وہ پیپر میں آیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا, یہ ہم کو کس نے بتایا کہ ان آتماؤں نے شریر نہیں لیا ہے, اس کی کیا گیا, اس کا کیا بھگوان نے بتایا کہ انہوں نے شریر نہیں. بابا نے آج تک ان باتوں کی کہیں پر بھی کوئی چرچا نہیں کی ہے, کہیں پر بھی. ایڈوانس پارٹی کی کتاب ہے اسپارک کی, وہ پوری کتاب پڑھ لو, اس میں سارا گیان جو ہے پورا اسپشٹ نہیں ہے, بہت ساری باتیں ابھی بھی گیان کی اسپشٹ چھوڑ کے رکھی ہے بابا نے, اور وہ جاننا ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا پرشارتھ سے کیا سمبندھ ہے. چلو مجھے پتا چل گیا وہ آتما نے شریر چھوڑا, اس نے شریر لیا اس نے نہیں لیا, کیا میرا کیا فائدہ, میرے آتما ابھیمانی استھتی میں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. ستیوگ میں بارہ جنم ہے کہ تیرہ ہے یا چوتھا ہے, چودہ ہے, اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. چکر جو ہے پانچ ہزار سال کا ہے کہ پانچ ہزار دو سو سال کا ہے, کیا فرق پڑ رہا ہے. جنم چوراسی ہے یا نبے ہے, کیا فرق پڑ رہا ہے. یہ تو گیان کی بات ہے, اس سے پرشارتھ کا بابا نے بہت بار کہا اس میں تم نہیں جاؤ. جانور کتنے جنم لیتے ہیں, جانوروں کا پرم دھام کہاں پر ہے, جانوروں کا کیا حساب کتاب ہے, یہ ایسے آسان کے پرشن ہے. پرم دھام کی یہاں سے دوری کتنی ہے, اچھا سوکشم وطن میں کون کون رہتا ہے. اس دن مرلی میں آیا تھا براہمن اور دیوتاؤں کا ملن ہوتا ہے, اب یہ ملن ہو سکتا ہے, امپوسیبل, ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو رمنیک باتیں بابا کہتا ہے بھوگ میں بھی. اچھا اور ایک دوسرا پرشن, بھوگ میں کون جاتا ہے اوپر جو بھوگ لگاتی ہے, وہ جو درشیہ دیکھ کے آتے ہیں نا, کون کہاں جاتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے کوئی, کیا کیا اتر ہے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں, कौन जाता है? शरीर जाता है, आत्मा जाती है, सूक्ष्म शरीर जाता है, वो हम पूछ रहे हैं। कौन जाता है, कौन जा रहा है? आत्मा शरीर से निकलना अर्थात मृत्यु, इसके लिए आत्मा तो नहीं जा रही है फाइनल, क्योंकि आत्मा का शरीर से निकल जाना अर्थात मृत्यु, तो आत्मा तो नहीं जा रही है। एक दूसरा, स्थूल शरीर जा रहा है, स्थूल शरीर तो सामने दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर आत्मा के संकल्पों की रचना है, वो अकेला नहीं घूम सकता है, आत्मा चाहिए। जा क्या कौन रहा है? कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब कुछ यहीं पर इमर्ज हो रहा है, मर्ज इमर्ज का खेल है। बाबा चाहे तो अभी अभी सतयुग के हमारे संस्कार इमर्ज कर दे तो मुझे लगेगा मैं देवता हूं, कृष्ण के संस्कार अगर मुझ में इमर्ज कर दे तो मैं कृष्ण की जैसा डांस करने लगूंगा और हम कहेंगे कृष्ण की आत्मा इसमें आ गई। कृष्ण की आत्मा नहीं आ रही है, संस्कार मर्ज और इमर्ज का सारा खेल है, यहीं पर बाबा इमर्ज कर देता है, वो यहां का पूरा मर्ज और उधर का इमर्ज, वहां पर फिर दादियां दिखेंगी, ये दिखेगा, वो दिखेगा, देवता दिखेंगे, देवता ब्रह्मा भोजन को तरसते है, क्यों तरसेंगे? लॉजिक ही नहीं है इस बात का, वो सतोप्रधान दुनिया है, वो यहां का भोजन क्यों खाएंगे? उनको तो पता ही नहीं ब्रह्मा भोजन क्या है। ये मुरलियों में बातें आती है सारी, उन दोनों का मिलन सूक्ष्मोतन में हो रहा है, इम्पॉसिबल। ये तो इमर्ज है, इमर्ज में कुछ भी किया जा सकता है, जैसे अभी एडवांस पार्टी की आत्मा है, मुरलियों में आता है दादी जाती है वतन में, फिर वहां पे प्रकाशमणि दादी को इमर्ज किया, मम्मा आई, ये आया, वो आया, ये सब आए, कहां से आए? अच्छा, मम्मा वहां आ रही है, मम्मा की आत्मा अभी किसी और शरीर में है, वो आत्मा उस शरीर से निकलना अर्थात मृत्यु, वो नहीं हो सकता, उसकी देह अभी चेंज हो गई है, वो दूसरा सूक्ष्म शरीर नहीं आएगा। तो ये जो हो रहा है, ये मर्ज और इमर्ज सब कुछ, कुछ भी किया जा सकता है, संकल्प है सारे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कहीं पर भी कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए ये जो बात है कि वो आत्मा ने शरीर लिया या न लिया, ये सारी बातों का पुरुषार्थ से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका उत्तर मिल भी जाए तो एक प्रश्न 10 नए प्रश्नों को जन्म देगा। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सब लिख के रख सकते हैं कि इस ड्रामा में कुछ राज राज ही रहेंगे, और यही इस ड्रामा की शोभा है। इस ड्रामा में कुछ राज राज ही रहेंगे, यही इसकी शोभा है। बाबा ने बहुत सारी बातें छोड़ दी है, थोड़ा सा बोलते हैं और छोड़ देते हैं, आगे नहीं बताते क्या है। अभी प्रत्यक्षता, संगम युग के दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 जो है संगम युग का अभी चालू नहीं हुआ है, वो है प्रत्यक्षता का। भगवान की प्रत्यक्षता कैसी होगी? एक तरफ साक्षात्कार, एक तरफ विनाश, एक तरफ आत्माएं छोड़ रही है शरीर, फरिश्ते ही फरिश्ते छा जाएंगे आसमान पर, बाबा ने कहा है। चारों तरफ बाबा बाबा बाबा, और ये भी कहा है कि आत्माएं एक साथ 100, 200, 300, 10,000 आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, कहां जाएगी? दूसरी दूसरी आत्माओं में प्रवेश करेगी, एक एक आत्मा में 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी, परंतु किन आत्माओं में प्रवेश करेंगी? जो कमजोर है, जिनका देह से लगाव है, उन आत्माओं में, ये जो बस एक्सीडेंट हो गया या बहुत बड़ा वॉर हो गया कहीं, या भूकंप आ गया और एक साथ 50,000 लोग मर गए, विनाश के समय यह आत्मा जाएगी कहां? ढूंढेगी शरीर, एकदम ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि समय अभी रहा है, ऊपर जाने का टाइम अभी एग्जैक्ट आया नहीं है, तो आत्माएं शरीरों को ढूंढेगी। परंतु ये सारे जो प्रश्न है, इसका पुरुषार्थ से, ज्ञान से, योग से, तपस्या से कोई संबंध नहीं है, तर्क वितर्क की बातें, इससे डिबेट होगी और डिबेट से और ही माथा खराब होगा। डिबेट तो कितनी भी कर सकते हैं, रात भर भी चलेगी ये डिबेट, परंतु हाथ में कुछ भी नहीं, शास्त्रार्थ जैसा हो जाएगा वो, शास्त्रे वादी भयम, जितने ज्यादा जितने शास्त्र की पढ़े हैं उसको वाद विवाद का भय रहता है। और कोई प्रश्न? हाँ हाँ, ये वाली, ये तो हो गई, भोजन के विषय में उसके बारे में बताएंगे। अभी ये सारे जो प्रश्न है सूक्ष्म वतन, हम चाहते थे कि आप हमको ज्ञान और पुरुषार्थ कैसे बढ़ाए उसके प्रश्न ज्यादा पूछे तो अच्छा है। सूक्ष्म वतन क्या है, उसका ओरिजिनल कलर क्या है, पहले यहीं रुकते हैं। ये ब्रह्मलोक है, ये धरती है, यहाँ पे पांच तत्व है और यहाँ पर ब्रह्मलोक है। सूक्ष्म वतन कब निर्माण हुआ, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है। सूक्ष्म वतन संगम पर निर्माण हुआ, राइट है? वो तत्व है, क्या तत्व को निर्माण किया जा सकता है? वो तो अनादि है, तत्व अनादि है, तत्व को कोई निर्माण नहीं कर सकता है। फिर भी मुरलियों में आता है सूक्ष्म वतन की रचना संगम पर होती है। अब बताओ, जैसे यहां से हैदराबाद, कोई एक बीच में शहर का नाम बताओ जो बीच में आता है। सिंपल सेडम, सेडम ना, हाँ सेडम, गुलबर्गा हैदराबाद, बीच में सेडम, ठीक है। एक समय था ये सेडम नाम का कोई शहर नहीं था, कोई गांव था ही नहीं, खाली रास्ता था हैदराबाद टू गुलबर्गा, रास्ता था पर इसको कोई नाम नहीं था, पर वो स्थान तो था, स्थान तो हमेशा से ही था। और एक समय ऐसा आया 10 साल के बाद कि उसको नाम दिया गया सेडम। फिर हम कहते हैं सेडम का निर्माण कब हुआ, 19 ये साल में हुआ, पर वो साल में नहीं हुआ है, वो स्थान तो पहले से ही था, नाम अभी दिया गया है क्योंकि वो तत्व है। उसी तरह अगर ये परम धाम है, ये धरती है, ठीक है, इसके बीच में ये सूक्ष्म वतन, तो इसका कलर कौन सा है? पहले तो यहां पांच तत्व है, ये तत्व जहां एंड होते हैं और जो ब्रह्मलोक जहां पर एंड होता है, दोनों रंग यहां मिक्स हो रहे हैं और दोनों के मिक्सचर से जो नया एक बन रहा है वतन कहो जिसको या जो भी कहो, वो है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन कोई अपने आप में कोई स्थान नहीं है, इट इज द मर्जिंग पॉइंट, ऊपर और नीचे दो चीजें जहां मर्ज हो रही है, वो एक बीच का है, वो बीच का स्थान है एक। तो जहां जैसे ब्रह्म तत्व यहां है, उसका कलर थोड़ा थोड़ा फेड हो रहा है और यहां के तत्वों का कलर यहां मिक्स हो रहा है, वो जो बीच का ट्रांजिशन पॉइंट है, दैट इज सूक्ष्म वतन। और वो हमेशा से ही है, परंतु हाँ, जब क्योंकि जब आत्माएं नीचे आई धरती पर सतयुग में, तब भी वो था पर कोई नाम नहीं था। अभी जब भगवान आया तो भगवान ने उसको नाम दिया, ये सूक्ष्म वतन है, पर वो तो था पहले से ही एक। दूसरा, वहां रहते कौन है? कौन रहते? फरिश्ता, एक ही व्यक्ति रहता है बस, ब्रह्मा, उसके अतिरिक्त वहां कोई नहीं है। हम अपने कोर्स बुक में क्या दिखाते हैं, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी, ये सब जो है ना, ये भक्ति की बातें थोड़ी उनको भी ठीक लगे उसके लिए है वो। विष्णु सूक्ष्म वतन में आ सकता है? इम्पॉसिबल, वो तो सतयुग का देवता है। विष्णु, शंकर, शंकर नॉन एंटिटी, शंकर नाम का कोई व्यक्ति संसार में है ही नहीं, हम ही शंकर है, ब्रह्मा शंकर है, दैट्स इट। ये तो हम थोड़ा उनको समझाने के लिए, मतलब उनको ना लगे कि ये एकदम ही दूसरा ही ज्ञान सुना रहे, ये अपना ही ब्रह्मा निर्माण किया उन्होंने, तो थोड़ा हम दिखाते हैं, बाकी ना तो कोई इस तरह से कुछ नहीं है, ये बात। अगला, अच्छा प्रश्न पूरा करते हैं पहले तो, सूक्ष्म वतन क्या है, कैसा है? कैसा है तो वो तत्वों की दुनिया है और वहां बाबा कुछ भी मर्ज करते, कभी सुशुभी रस, कभी पहाड़ी, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, सब कुछ मर्ज इमर्ज का खेल है। ओरिजिनल कलर, उसका कलर अगर हम चाहे तो कह सकते हैं व्हाइट, परंतु व्हाइट कहना भी गलत होगा, परमधाम का कलर रेड कहना भी गलत होगा, क्योंकि परमधाम तत्वों से परे है, इस दुनिया से पार है, तो यहां के कलर वहां कैसे अप्लाई होंगे? सूक्ष्म वतन को सफेद कहना, सफेद कहना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सफेद तो हमारी भाषा है मनुष्य लोक की, वहां तो तत्वों से पार जाके वहां लाइट मिल रहा है, फिर भी हम कह सकते हैं अ कलरलेस एरिया, अ लाइट एरिया, प्रकाशमय श्वेत वाली एरिया, हमारे योग के लिए ये सब भी। हाँ, फरिश्ता बाबा को किस रूप में याद कर करे? बाबा खड़े हैं वतन में, बाहें पसार कर या बैठकर सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं। हम सूक्ष्म वतन में कैसे जाना, किस स्वरूप में हम पहुंचना, इसके बारे में अनुभव युक्त उत्तर हमें चाहिए। आप ज्ञान में लास्ट आते, अच्छा ये दूसरा प्रश्न है, तो सूक्ष्म शरीर क्या है? पहली बात तो व्हाट इज सटल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, लाइट बॉडी, सूक्ष्म शरीर, ये अलग अलग नाम है उसके। और सूक्ष्म शरीर केवल हमने ही नहीं, भिन्न भिन्न सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में ये कॉन्सेप्ट आया है। व्हाट इज एस्ट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट, सटल बॉडी का कॉन्सेप्ट, लाइट की बॉडी का कॉन्सेप्ट, लाइट के कार्प का कॉन्सेप्ट, अंतवाहक शरीर का कॉन्सेप्ट, अंतवाहक शरीर, तो ये सारे जो है और सूक्ष्म वर्तन कितने, सूक्ष्म शरीर कितने हैं टोटल, अगर ये कोई प्रश्न आपसे विद्यार्थी पूछे तो कितने हैं, 84 जन्मों में कितने सूक्ष्म शरीर है, 84 जन्म में कितने सूक्ष्म शरीर है, अगर कोई ये प्रश्न पूछे तो ना? जितने जन्म उतने शरीर, या कहो सैकड़ों, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है क्या, हम जो भी संकल्प कर रहे हैं उसका जो ऑरा बन रहा है, जो वाइब्रेशंस बन रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ऐसा कुछ नहीं है जो फरिश्तों का दिखा रहे, ऐसा कोई फरिश्ता नहीं होता है जिसका पंख है, हाथ है, छड़ी है, मुकुट है, ये जो भी दिखाते हैं, दिस इज सिंबॉलिक है, सारा प्रतीकात्मक है समझने के लिए। बाकी सूक्ष्म शरीर अर्थात आत्मा जो भी संकल्प करती है, नया सूक्ष्म शरीर निर्माण हो रहा है। परंतु हाँ, 84 जन्मों के 84 सूक्ष्म शरीर, और एक एक जन्म के वो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी बदलते रहता है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस है। अभी मैं बहुत अच्छे सूक्ष्म, अच्छे वाइब्रेशंस कर रहा हूं तो अच्छा सूक्ष्म शरीर है, थोड़ी देर के बाद घृणा वाले संकल्प आ रहे हैं तो काला काला, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो ऑरा गिनते हैं ना आजकल, ऑरा देखते हैं कितना दूर जा रहा है, मशीन है उसके लिए ऑरा की, तो वो सारी चीजें है। तो बाबा से हम सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन अर्थात इस देह से अलग हो गई, आत्मा ऊपर गई। अब आत्मा जा रही है तो उसका सूक्ष्म शरीर हमेशा साथ है उसके, वो क्योंकि वाइब्रेशन है, लाइट है उसके, इसके प्रकंपन है, रेज है, वो जा रही है, यही अनुभव करना है। ये जो स्वरूप है आत्मा का देह से अलग, यही फरिश्ता स्वरूप है। हर वो स्थिति जो देहभान से परे है फरिश्ता स्थिति है, हर वो स्थिति जो देहभान से परे है फरिश्ता स्थिति है। तो सूक्ष्म वतन में जाना या वतन को यहां लाना, ये सारी योग की ड्रिल्स है। जब दादियां थी पहले 1936 से लेके 50s तक, तब ये सब कहां था ड्रिल्स, वो ये सब करते थे, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं था तब, बस बाप को याद करना है बस। ये तो हम इसका विस्तार किया है सारा, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग और समझ के लिए है। आगे भी प्रश्न है, आप ज्ञान में लास्ट आते भी, इसमें लिखा है कि हमारा पर्सनल प्रश्न पूछा है कि आपने इतना पुरुषार्थ कैसे कर लिया, और हम केवल एक ही बात कहेंगे, एक जो पुरुषार्थ हमने किया है वो है एकांत, एकांत में ज्ञान का चिंतन और तपस्या, योग, ये दो कारण है। जैसे हम ज्ञान में आए, हमारे अंदर जबरदस्त एक प्यास थी इस ज्ञान को समझने की, और इस ज्ञान को गहराई से समझने की, ऊपर ऊपर से नहीं, केवल ऊपर ऊपर से हाथ फिरा देना हमको पसंद नहीं है, मुरली के ऊपर से, उसको डेप्थ में जाके एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो हमें पता नहीं, समझा ना हो, ये एक अभीप्सा, एक प्यास, एक डिजायर, इनर मोस्ट डिजायर। और उत्तर इसका ये है एकांत, कि एकांत में रोज हम कहेंगे कम से कम 2-3 घंटा ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन, और चिंतन करते करते ही योग, और वो भी प्रकृति के सानिध्य में, आबू की पहाड़िया, इन्होंने ही हमें ये ज्ञान समझाया। हमने ज्ञान मधुबन में बैठ के नहीं समझा, हमने ज्ञान जो समझा है इन पहाड़ियों पर, एकांत में, छत पर चलते फिरते, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए। और एक कारण तो ये, और दूसरा कारण संपूर्ण पवित्रता का पालन, एक श्रेष्ठ चिंतन और पवित्रता, तीसरा ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का चर्चा करना। हमारी जो ओपीडी है आप लोगों ने देखी होगी जो आए हैं, उसमें रात में वो ओपीडी ज्ञान का क्लास बन जाती है, 8:30 से 9:30 तक एवरी डे जो भी नर्सेस और कुछ डॉक्टर्स और कुछ और असिस्टेंट हॉस्पिटल स्टाफ वो वहां पर आ जाते हैं, 10-12 लोग, कभी 5-6, कभी ज्यादा कभी कम, और रोज की जो मुरली है उस पे हम 1 घंटा तक डिस्कशन करते, जिसको जो पॉइंट याद है, आज बाबा ने क्या कहा, ये क्या कहा, और ऐसा हर दिन रोज ज्ञान का डिस्कशन। जो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स आते हैं ज्ञान में बहुत सारे, कभी कभी झगड़ा भी होता है ज्ञान की वजह से, मतलब ज्ञान वाला झगड़ा, कोई कहता है नहीं ऐसा है, हम कहते हैं ऐसा है, वो कहता है वैसा है, वो कैसा वैसा है, तो इस तरह से ज्ञान का और ज्यादा भयंकर चिंतन स्टिमुलेट हो जाता है कि क्या है। और हमने देखा जब ज्ञान का ऐसा चिंतन चलते रहता है तो मन में हमारे व्यर्थ कुछ भी नहीं है, जबकि आसपास बहुत व्यर्थ चल रहा है, ऐसे कोई स्थान है जहां व्यर्थ नहीं है, बताओ। लोग कहते हैं अरे तुमको पता नहीं वहां ये हुआ, हम क्या करें, हमको जानना ही नहीं है। शांतिवन से एक दिन के लिए आते हैं, पूरी एक दिन में इंफॉर्मेशन निकाल के घर, समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया, क्या काम किया, व्यर्थ। कौन किसके डिपार्टमेंट में, कौन घर गया, कौन क्या हुआ, किसके साथ क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, हमारी सेवा है और हम है और ज्ञान है बस, और किससे कोई लेना देना नहीं है। तो व्यर्थ की अविद्या जैसे, केवल ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की चर्चा, और सुबह जितना जल्दी हो सके पंडभवन जाके कुटिया में या कमरे में एकदम संपूर्ण अशरीरीपन का अनुभव। और हमने देखा बहुत सारी चीजें हमने जो क्लासेस में कही है वो कहीं पर भी लिखी नहीं है, उस अवस्था में ही हमको टच हुई है जहां पर एकदम अशरीरी हो गए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस वहां पर वो एकदम से जैसे पॉइंट आ गई। जैसे अभी अभी हमने यही पिछले 10 दिन में ही जो यहाँ क्लास कराई थी, मुरली पढ़ने की अलग अलग विधि अचानक से टच हुआ, योग करने की अलग अलग विधि अचानक से टच हुआ, ए फॉर दिस, बी फॉर दिस, या ऐसे अलग अलग कुछ भी, हर दिन नया, एक दिन भी पुराना नहीं, नया नया नया। ये एक कारण है कि जिसकी वजह से मतलब हमको लगता है कि स्थिति हमारी अच्छी है। और प्रश्न कोई, चलो वैसे हाँ हाँ सबसे पहले तो किसी भी अव्यक्त वाणियों में ऐसा कुछ नहीं आया है। हाँ सबसे पहले तो भगवान का एक बात समझ लेना है कि उसका सिखाने का पाठ खत्म हो चुका है, यहां तक कि 6 जून 1969 अव्यक्त मुरली, 6 जून 1969 अब बाप का पढ़ाने का पाठ, अब पढ़ाई पूरी हुई फुल कॉमा, अब बाप मिलने आते हैं, पढ़ाई तभी पूरी हो चुकी है, ये तो एक्स्ट्रा कोर्स था। 69 जून की बात अव्यक्त मुरली, अब पढ़ाई पूरी हुई कॉमा, बाप पढ़ाने आते हैं फुल स्टॉप। पढ़ाने का पार्ट तो 69 में ही पूरा हुआ था, ये रिवाइज कोर्स चल रहा था, अब रिवाइज कोर्स भी ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी और कितना सिखाएगा वो, 80 साल तक ज्ञान दे ही रहा है अव्यक्त मुरलिया, 40 साल से चली रही है, उसका ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा हो चुका है, अभी केवल देखना यह है वो किस तरह से विदाई लेता है, वो अपनी उसका समेटना चालू हो गया है, परंतु अब भी बाबा आ रहे हैं, और ये जो आ रहे हैं ये उन आत्माओं के लिए आ रहे हैं जो नई है, एकदम नई आत्माएं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, कोई धर्मात्मा होगी, कोई क्राइस्ट या कोई कुछ तो होगा उस सभा में, उनको खत मिलने के लिए। और अभी जो शब्द बाबा कह रहे हैं वो शब्दों को छोड़ दो, उसमें तो अभी ये भी एक बात है कि दादी का जैसा ब्रेन है इस समय, बाबा को समझने के लिए अभी दादी की मेडिकल कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। बिना दादी की मेडिकल कंडीशन को समझे हुए आप बाबा को नहीं समझ सकते, आसपास क्या चल रहा है दादी के। दादी की अभी जिस तरह से हालत है, हमने कितनी बार अभी बीच में देखा दादी को, अभी अभी ठीक, अभी अभी खांसी, अभी अभी निमोनिया, अभी अभी सुबह कुछ, अभी अभी आईसीयू में, फटाफट फटाफट इतना नाजुक हो गया है शरीर, इतना नाजुक कि फटाफट इन्फेक्शंस और ये वो, और याद मेडिकल लैंग्वेज में वर्बिजरेशन कहा जाता है, एक ही चीज को बार 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 पेशेंट रिपीट करता है, एक ही कहे हुए चीज को वर्बिजरेशन, रिपीट 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 रिपीट। बहुत सारी दवाइयां चालू है, उनका असर, इतने एंटीबायोटिक्स। अभी एडमिट थे अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई ब्रिज कैंडी, वहां से अभी अभी डिस्चार्ज हुए, उसके पहले भी दो तीन बार एडमिट, कई बार तो हमने ही वहां जाकर दादी को ट्रीटमेंट चालू की। तो इतनी सारी दवाइयां, तो बाबा अभी जैसे उसमें प्रवेश करता है, तो अभी ज्ञान सुनाने का पार्ट नहीं है बाबा, खाली मिलने का पार्ट है एक। दूसरा, बाबा अभी, ये बाबा ने अभी तक नहीं बताया कि उसका पार्ट कब पूरा होगा, ये अभी तक नहीं बताया कि बस अभी ये फाइनल विजिट है। कई बार लगा कि बस अभी ये हो गया, परंतु देखा फिर अगली मुरली, बाबा ठीक से आवाज भी मतलब चेंज और एकदम अच्छे से, एकदम नहीं होगा कुछ भी, धीरे 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 वो हमको तैयार कर रहा है। एकदम अगर चला जाए तो धक्का बैठेगा एकदम, धीरे धीरे धीरे, कभी आएगा, कभी आएगा ही नहीं, कभी दूसरे दिन आएगा। लोगों को लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतना व्यर्थ चलता है, इतना व्यर्थ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, अगर ये ऐसा है तो डेट्स क्यों आ गई। परंतु हमने देखा है कि ये सब चीजों में जाना ही नहीं है, सब व्यर्थ का भंडार है, सब व्यर्थ है, इन सब चीजों से मिलने वाला कुछ भी नहीं है, और ना ही इसकी हम ज्यादा चर्चा करें। कोई कहे तो बस उसको ज्यादा नहीं, फुल स्टॉप, बस करने का कुछ मतलब ही नहीं है। क्या होगा हमें क्या पता, भगवान की प्लानिंग क्या है कैसे पता कर सकते हम, उसके मन में क्या है। ना ब्रह्मा का अभी जन्म नहीं हुआ है, सबसे पहले तो बाबा ने कहा है शिव बाबा क्योंकि अब भी आ रहे हैं, और बाबा कभी भी किसी भी ब्रह्मा को छोड़कर बाबा किसी के भी तन में नहीं आ सकते, यही तो निश्चय है। अंत तक एक ही रथ रहेगा ब्रह्मा, ब्रह्मा को छोड़कर किसी भी देहधारी के तन में बाबा प्रवेश नहीं करते। वो थोड़े समय के लिए हो सकता है, वैसे जो मुरलियों में आता है ना, किसी के भी तन में प्रवेश करके टच करा के निकल जाता है, वो दूसरा। पर जो मुरली है, हम मुरली की बात कर रहे हैं, 21 जनवरी 1969 अव्यक्त मुरली, फर्स्ट अव्यक्त मुरली, 21 जनवरी, 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, 21 जनवरी हिस्ट्री हॉल अव्यक्त मुरली 1969, सारे डायरेक्शंस है, क्या होगा, कैसे होगा, यज्ञ कैसे चलेगा। बाबा ने उसमें कहा है जो ब्रह्मा के तन द्वारा मुरली चलेगी बस वही मुरली है, संदेशियों के द्वारा जो चला उसमें मुरली का जादू नहीं है, संदेशिया जो भी लाएगी वो मुरली नहीं है, और हमेशा अंत तक ब्रह्मा ही एकमात्र। कितनी बार मुरली में आता है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय होना चाहिए, प्रश्न आते हैं ना मुरलियों में कि ये निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा इस समय ब्रह्मा तन में विराजमान है और हमें ज्ञान सुना रहे, अंत तक वही रहेगा। और क्योंकि शिव बाबा अब भी आ रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मा ने वो सूक्ष्म शरीर, और सबसे पहली बात और एक दूसरी महत्वपूर्ण, ब्रह्मा संपूर्णता की दो परिभाषा है, एक तो ब्रह्मा संपूर्ण बन गया है, दूसरा ब्रह्मा संपूर्ण नहीं बना है, क्योंकि संपूर्णता की एक परिभाषा है कि सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ दे और आत्मा परमधाम चले जाए। वो अभी नहीं हुआ है, वो अभी सूक्ष्म वतन में ही है और शिव बाबा उसी के तन में आते हैं और वो दोनों ही बाप दादा दादी के तन में। इसके लिए ये तो सवाल ही नहीं है कि ब्रह्मा ने जन्म लिया है, इम्पॉसिबल, क्योंकि बाबा अभी भी आ रहे हैं और डायरेक्ट वो कभी नहीं आएगा दादी के तन में। डायरेक्ट आ रहे हैं मतलब दादी ध्यान में नहीं जा रही है, इसको कहा है डायरेक्ट। हाँ, तो वो स्वर से क्या फर्क पड़ रहा है, बाबा तो वही है ना, चाहे ये आवाज हो या कोई भी आवाज हो, आवाज से क्या फर्क पड़ रहा है। डायरेक्ट आना मतलब पहले ब्रह्मा के तन में डायरेक्ट आते थे बाबा, डायरेक्ट आया, कभी आए, अभी अभी आए और अब चले गए। दादी के तन में पहले दादी ध्यान में जाती थी, जैसे कि दादी का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जैसे आत्मा तो वही रहती थी परंतु वो सब मर्ज हो जाता था और फिर उसमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, बाप दादा, और फिर वो ध्यान में जाना या फिर वो झटका वगैरह जो भी है, अभी वो सब कुछ नहीं है। दादी अभी बैठी है और बाबा बस आ गए, इसको कहते हैं डायरेक्ट आना। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा अब भी है। हाँ जी, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। मैं हाँ, यदि थकान तब होती है जब ज्ञान का चिंतन नहीं करते, यदि कोई पकड़ के कहीं और कहीं ले ही चला जाए कहीं फंक्शन में या वो, तो वो मतलब वो तब लगेगा, बाकी नहीं। दोपहर में हाँ, ऐसा भी बहुत बार होता है कि कई बार हमको दादी जानकी को देखने दोपहर में जाना पड़ता है, तो वहां एक बार गए मतलब बहुत बड़ा चक्कर होता है, ये दादी वो दादी वो दादी वो दादी, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर और फिर ऊपर, तो उस दिन फिर रेस्ट चला जाता है, ऐसा भी होता है। परंतु हमने देखा कितना भी अगर हम व्यस्त रहे और बहुत रहे फिर भी रात को सोते हैं, चाहे बहुत बार ऐसा भी नहीं, हमारा 24 घंटा ऑन कॉल है, रात में 11 बजे पेशेंट आता है तो फोन, और फिर एक घंटे के बाद उसके ब्लड रिपोर्ट्स आते हैं जो भेजे हैं, कभी उसको वेंटिलेटर पे डाला, सीरियस है बहुत जगह, वो सब कुछ होता है, तो कभी कभी तो कंटिन्यूस चालू रहता है। परंतु हमने देखा ये सब करते हुए भी हम डिटैच है, क्योंकि बुद्धि ज्ञान और योग के चिंतन में है, इसके लिए वो डिस्टर्बेंस नहीं लगता है। नहीं तो पहले हमको क्या होता था, अभी हम योग में बैठे, अगर कोई फोन आ गया मतलब आईसीयू में कोई सीरियस पेशेंट, तो ऐसा लगता है ये डिस्टर्बेंस हो गया, पर अभी नहीं लगता ऐसा। अभी यहां पर भी वैसा, वहां जाके आओ वो भी वैसा ही, फिर आ जाओ, वो जो संघर्ष था ना, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वो सब नहीं है। तो हमको लगता है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान और योग और चिंतन बढ़ते जाता है, बहुत सारी नई नई बातें हमको पता चलती है। नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। सबसे पहले तो जो कुमार है वो साइड जो भी रहते हैं, वो जितना हो सके इंडिपेंडेंट रहे, खुद ही, उनका डिपेंडेंट रहना ये उनकी एक कमजोरी है। और सेंटर पर आश्रित है एक रीति से, बाहर रहते हैं चलो सेवा करते हैं वो दूसरी बात है, परंतु जितना हो सके वो इंडिपेंडेंट रहे तो बहुत अच्छा। एक दूसरा, यहां से उनको सहयोग देना है, बहुत अच्छे से सहयोग देना है, प्रेम से उनकी पालना करनी है, सब कुछ करना है, परंतु फैमिलियरिटी ना हो, बीच में झील, वो उस तरफ हम इस तरफ, बैठ के बातें करना, इधर उधर की चर्चा करना, ये सब चीजें ना हो, काम से काम बस, फोन आया हाँ ना हाँ ना, बस 3 मिनट से ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है बात करने की। फिर क्योंकि वो जो फैमिलियरिटी बढ़ती है, फिर वो अपने सुख दुख सुनाएंगे, सुख दुख भी सुनाए तो ऑफिशियल, वहां पे आपको शक्ति रूप धारण करना है, वो यहां बैठे हम यहां बैठे काउंसिलिंग, जैसे जैसे डॉक्टर के पास, कैसे डॉक्टर है, पेशेंट है, वो अपना प्रॉब्लम सुनाता है, डॉक्टर इन्वॉल्व थोड़ी हो जाता है उसमें, अरे तुमको ऐसी प्रॉब्लम है ओ, और फिर पूछेगा, बहुत ज्यादा अटैचमेंट पेशेंट्स के साथ। जैसे डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन में डिटैचमेंट होनी चाहिए तो ही उस पेशेंट का कल्याण है, नहीं तो यहां कुछ और ही नया बंधन उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह टीचर और स्टूडेंट, ये संबंध, इसमें दूरी रहनी चाहिए, प्यार प्रेम करो, पालना करो, सब कुछ करो, परंतु वो स्टूडेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है, बैठे बताए, हमने सॉल्यूशन दे दिया, फुल स्टॉप। अब वो अगर पीछे ही पड़ रहा है तो उसको झटक दो, जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम उसका कल्याण नहीं कर पाएंगे। हमें अगर उसका कल्याण करना है तो डिटैचमेंट चाहिए बीच में, वो डिटैचमेंट ही उसके लिए वरदान होगा। उसको नहीं, तब नहीं समझ में आ रहा है वो, उसको तो लग रहा है ये हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, पर उसमें ही उसका कल्याण है।
उस बहन का पूछने का जो प्रश्न था,
हाँ मुझे तो अपने लिए पूरा क्लियर नहीं आया,
अपने लिए नहीं था,
हाँ
उसका ये था, कोई बहनों से ऐसी बातें हो जाती है, फैमिलियरिटी आती है किसी भाई के साथ,
उसके घर में
नहीं, जो सेंटर पर बहने हैं,
हाँ
उनका किसी कुमार के साथ ऐसे फैमिलियरिटी का केस, हाँ, हो जाता,
हाँ,
है,
हाँ,
उसको बड़ों के, बड़ों तक हम पहुंचाते हैं,
हाँ,
वातावरण बनता है, तो बड़े कहते हैं वो कोई विकार में गए क्या,
हाँ,
ऐसे बड़े कहते हैं, ये उस बहन का प्रश्न था,
हाँ,
तो प्रैक्टिकल इतने जो बैठे हैं यहाँ, सिर्फ एक ही बहन बाहर जोन की है, सब अपने हैं, तो कोई बहने गलती हो जाती है, उसको शायद अंदर ही अंदर पता भी लगता है, इतना ज्ञान होने के कारण मैं गलती कर रही हूँ, फिर भी वो संस्कारों के वश है, बहन संस्कारों के बुद्ध की कहानी में हम सुनते, आनंद को बचाया बुद्ध ने अपनी योग की दृष्टि से, तो नई कन्या को तैयार करने, नए कुमार को तैयार करने के पीछे, नए जिज्ञासु को तैयार करने के पीछे हम बहुत योग लगाते हैं। अपने परिवार के अपने साथी बहन कोई गलती करती है, वो गलती है, लेकिन उसको एकदम पनिशमेंट दे के यज्ञ से बाहर नहीं डाल सकते, है ना, उसको उठाने की, उसको शुभ संकल्प के द्वारा बचाने की कोशिश होनी चाहिए हमारे द्वारा, ऐसे बड़े समझते हैं, क्योंकि यज्ञ मधुबन दादियां हमें ये सिखाते, सबको लेके चलो, बल दे के चलो। शांता बेन का पूछने का ये था, ऐसे ऐसे गलतियां बहनों से होते हैं
जी,
फिर भी बड़े कहते वो कोई विकार में गई क्या, तो ये समझाने की बड़े कोशिश करते हैं, विकार में गई 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 नहीं, उसको उससे गलतियां हुए हैं, लेकिन ऐसे सूक्ष्म परिस्थिति यज्ञ में आज है, हैंड्स नए तैयार नहीं हो रहे, नए हैंड्स तैयार कहीं भी यज्ञ में आजकल नहीं हो रहे, कुमारियों में इतना पहले जैसे त्याग तपस्या करने का, इतनी सारी बातें झेलने की उसमें कैपेसिटी नहीं, कन्या में नहीं है, तो आप लोग आ गए, आप में कैपेसिटी थी, ये बहने आ गए, हम लोग आ गए, हमको बाबा ने चुना, इतनी हमारे अंदर थी वो बल, उस बल के आधार से ही आगे यज्ञ को चलाना है हमें। तो हम ये सोचते हैं कोई कैसे भी है, आज वैसे है, उसको हम बहुत बल देंगे ना शुभ संकल्प का, कल बदल के बहुत विशेष पुरुषार्थी बन सकते हैं, ऐसे अनुभव भी है, बहुत अच्छे बन सकते हैं। उसको एकदम पनिशमेंट दे के यज्ञ से बाहर निकालो, या उसको वो सेंटर छुड़ाओ, उसको ये करो, हाँ वो नियम का उल्लंघन करती, विकारी बनती, तो यज्ञ में नियम बना रहे, उसको सेंटर इंचार्जशिप से हटाया जाता है, विकारी बनती है पूरा पवित्र। गलतियां होते हैं, झुकाव लगाओ, उस घड़ी उसके आंखों के सामने पट्टी आ जाती है, वो रियलाइज करने की स्टेज उसकी नहीं रहती है, तो हमारे योग बल से, शुभ संकल्प से उसको उठाने के लिए सब बहने कोशिश करे। प्रकाशमणि दादी यही हम बहनों को सिखाए कि सबको लेके उसके प्रति भी योग का प्रयोग करो आप लोग, कई नाजुक परिस्थितियां
जी।
ये
बहुत सूक्ष्म और बहुत नाजुक परिस्थिति है।
बड़े वो जानते हैं कितनी सूक्ष्म है, यज्ञ के आगे कितना धक्का आएगा उस घटना से, उसको बहुत सूक्ष्म रूप से हैंडल करना पड़ता है। जब बहने बड़े हो जाते हैं तो उनमें भी ये ताकत आनी चाहिए, कैसे हम हैंडल करके उसको ठीक करने की दिशा में हम क्या करें, न कि वातावरण बनाए, चर्चा के द्वारा ग्रुप नहीं बनाए, वातावरण नहीं बनाए, ये हम बहनों की जिम्मेवारी बनती है, ऐसे विचार चले।
इसमें कुछ एक दो बातें मुझे ऐड करनी है। इंग्लिश में एक सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं लूसीफर इफेक्ट। लूसीफर इफेक्ट साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। ये लूसीफर इफेक्ट क्या है? लूसीफर नाम का एक फरिश्ता था विदेश में, वो फरिश्ता भगवान के खिलाफ हो गया और बाद में फिर भगवान के विरुद्ध होके अलग हो गया, वो उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। सो ऐसी बातें हैं। फिर उसी को बाद में शैतान कहा गया कुरान में और बाइबल में। अब ये लूसीफर इफेक्ट ये कहता है कि एक अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा, नैतिक, वह व्यक्ति भी कभी कभी अपने जीवन में गंभीर गलतियां कर बैठता है। एक बहुत अच्छा योगी कहो, सत्वप्रधान कहो, एक बहुत मॉरल व्यक्ति भी कभी कभी गलती कर देना, इसी को लूसीफर इफेक्ट कहा गया है। तो ये लूसीफर इफेक्ट इस ब्राह्मण परिवार में देखने को बहुत मिलता, क्योंकि चाहे बहने हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, क्योंकि हर दिन नई नई परिस्थितियां हैं, और यदि विकार के वश या और किसी के वश कोई गलती हो जाती है तो वो जो गलती होती है उस समय, जैसे बहन जी ने कहा, आंखों पर पट्टी आ जाती है। वो एक पैशन जिसको कहते हैं, वो वासना कहो, इच्छा कहो, प्रभाव कहो, दूसरी आत्मा का इतना ज्यादा हो जाता है उस समय कि वो गलती कर बैठती है, और गलती करने के तुरंत बाद फिर रियलाइज होता है उसको, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बात फैल भी जाती है। अब उसके साथ क्या करना चाहिए, वो एक प्रश्न है और बहुत नाजुक प्रश्न है। सबसे पहले तो हैंड्स मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। अभी एक दूसरा एक उदाहरण देता हूं मैं। अभी अभी हमारी ओपीडी में एक बहन सेंटर पे रहने वाले भाई को लेके आई। सेंटर पर ही रहता है बड़ी बहन, और कहा कि इसको जरा देखो, इसको प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो हमने उसको देखा, सब दिया, उसका एंडोस्कोपी किया, ट्रीटमेंट चालू किया, और फिर बाद में उस बहन ने एक बात हमको और भी बताई। हमने कहा कि ये भाई जो है ना, वो उसको बाहर भेजा कि ये थोड़ा डिप्रेस दिखता है। हमने उसको कहा ये हमारा मेडिकल डायग्नोसिस है कि ही लुक्स डिप्रेस्ड। तो उसने कहा, अब उसने कहा ये भाई ने सेंटर पर रहता है और हमारे पास एक ही भाई है, सेंटर का काम चालू है, दूसरा भाई कोई है नहीं, पर इस भाई ने एक बार एक बहन के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर भी हमने उसको रखा, गलती किया, सॉरी किया, सब कुछ किया, थोड़ा बहुत कुछ किया होगा उसने, तो उसके बाद उसको तो रखा, क्योंकि कैसे छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम, मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है वो। एक बार तो गलती की, पर कुछ महीने के बाद फिर से दोबारा गलती की, और फिर से सॉरी, फिर से सब कुछ, और अभी एकदम बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अगर देखा जाए तो नाजुक परिस्थिति है, परंतु अगर उसको तब कह दी जाए कि चले जाओ तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि देखो गलतियां हरेक से होती है, गलतियां हरेक से होती है, परंतु ये है कि अगर उसमें हमको, उसको हम किस तरह से समझाते हैं ताकि उसके अंदर वो पश्चाताप का भाव आ जाए, और फिर उसको उस पश्चाताप से भी मुक्त करना। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने 3 स्टेजेस बताई है दूसरों को कैसे शिक्षा दे। सबसे पहले खुद स्वमान में स्थित हो जाए, दूसरा उसको स्वमान में स्थित कराए, तीसरा उसकी स्तुति करे, और बाद में उसको शिक्षा दे, उसकी महिमा करे कि तुम कौन हो, क्या हो। डायरेक्ट अगर किसी को कह दिया कि ये जो तुमने किया बहुत गलत है, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत नाजुक मैटर है। तो जो अगर बहन है या भाई है या जो भी है, इशारा देना तो काम है हमारा, परंतु वो जो टोन है इशारा देने का वो कैसा है। मैक्सिमम झगड़े जो होते हैं ना, एक बार जयंती बहन ने कहा था 90% वो हमारी जो आवाज है उसका टोन कैसा है उसकी वजह से होते हैं। गलती की किसी ने और किसको कह दिया, ये कह दिया तुमने, गलती हुई और उसको प्यार से समझाया, बात वही कही, उसमें अंतर है। तो ये सब तो होगा, परंतु अगर वो छोटे हैं हमसे तो हमें उनको सिखाना पड़ेगा, और सिखाएंगे भी कैसे, अपने उदाहरण देके समझाना कि हमने भी ऐसी गलती की थी तो ये परिणाम हुआ, उसको उदाहरण दे दे के समझाना पड़ेगा। एक उर्दू में ऐसा कुछ एक शायरी है कि जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं तुमको सिखा सकता हूं, मुझसे सीखो, क्योंकि गलतियां मैंने तुमसे ज्यादा की है, ऐसा कुछ है वो। तो हम उस व्यक्ति को समझाएं, उदाहरण देकर समझाएं, अगर वो छोटा है हमसे तो, या हमारा साथी है तो, और उसको समझाना पड़ेगा और उसको वैसे ही हैंडल करना पड़ेगा जैसे बहन जी ने कहा, क्योंकि किसी को घर भेजना या भेज देना ये उसको जैसे हम परमानेंट शापित कर दे रहे हैं हमेशा के लिए, आगे वो क्या करेगी आत्मा। डीप रियलाइजेशन करना आत्मा को, अनुभव के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, क्योंकि ये जो, और दूसरी बात जो बहन जी ने पूछा, लगाओ झुकाओ कुमारों के साथ, ये शुरुआत है, इसका अंत कहाँ होता है किसी को भी नहीं पता। एक समर्पित भाई एक जगह था, एक समर्पित बहन कहाँ थे वो नहीं बताएंगे, दोनों ने भाग के शादी की, क्या आवेग होगा, क्या फोर्स होगा वो उस समय, वो क्षण, एक समर्पित भाई एक समर्पित बहन दोनों ने भाग के शादी की, शादी की और तुरंत पश्चाताप, प्रकाशमणि दादी के पास पहुंचे, माफी मांगी 6 मास तक रोज या बार बार, बाद में कही दादी ने उनको, धीरे धीरे फिर स्वीकार किया। आज भी वो दो गए, आज भी ज्ञान में, एक जन एक जगह है, पति वो जो भाई जो पहले समर्पित रूप था अभी नौकरी करता है एज अ टीचर। ये ऐसी परिस्थितियां होती है, वो आवेग होता है, एक फोर्स, जो आत्मा, अच्छी अच्छी आत्मा भी स्वयं को रोक नहीं पाती है, परंतु क्या करें, उनको हमेशा के लिए शापित कर दे। हम मास्टर रहम दिल है, बहुत रहम दिल बनना पड़ेगा। दादी ने ऐसे बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट निर्णय लिए है, यज्ञ में तो हजारों चीजें होती रहती है, हजारों चीजें, गलतियां किससे नहीं। एक उदाहरण है, बहुत खराब उदाहरण हमारे जीवन का जो हमने अनुभव किया, बहुत ही खराब। एक बार जैसे हमने सुबह कहा था ना, हमको एक बार एक जगह हम गए थे कहीं, तो वहां पर बड़ी बहन जी ने हमको फोन किया रात में कि आ जाओ, वो जो बहन है वहां पे उसको उल्टियां हो रही है बहुत। तो हम गए वहां पर, समर्पित बहन वो किसी दूसरे सेंटर पर रहती थी, हम गए तो हमने उसको देखा, हमको थोड़ा डाउट हुआ, हम तो वहां थे रहते नहीं थे, हम उस जगह के भी नहीं थे, हमको कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो हमने क्या कहा कि इसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करो, और वो पॉजिटिव निकली, परंतु बहन बताने को तैयार नहीं। उस बहन को दूसरी जगह भेजा गया था फिर बाद में अबॉर्शन के लिए, दूर कहीं। खराब बात है, परंतु ये सब है। वो भी सीन मुझे याद है, स्टेशन पे हम खड़े हैं, वो बहन को चढ़ा रहे स्टेशन पे, बैच लगा हुआ है, देख दूसरी बहन ने बैच निकाला उसका, बैच के साथ नहीं भेज सकते वहां जहां भेज रहे थे, फिर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, वो पश्चाताप बिल्कुल नहीं, और वो भेजा भी हमने कहा अपनी जिम्मेवारी पर, हमारे कोई रिलेटिव दूर गायनेकोलॉजिस्ट अगर यहां कराए यज्ञ की निंदा ग्लानी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि वहां जाओ। वो जो बहन थी दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट, वो ज्ञान में जो हमारी रिश्तेदार, उनके पास भेजा, वहां पर भी बताने को तैयार नहीं, कुछ है ही नहीं बोल रही है, तो यहां कैसे निकला? 3 months. अभी वो बहन की शादी हो चुकी है, वो घर पे है, गृहस्थी बनी है. इतना सब सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि डायरेक्ट उस स्टेज तक नहीं आता है कोई, उसके पहले बहुत सारा होता है, लगाव, झुकाव, आसक्ति, डिपेंडेंस, वार्तालाप, कन्वर्सेशन, जो गुह्य भाष्य कहा, फिर संकल्प और ये और वो, बहुत सारी चीजें होती है और बताया नहीं अंत तक भी. वो तो वॉमिटिंग्स और वॉमिटिंग्स, मैंने हमने कहा ये दिस वॉज लिटिल डिफरेंट, ये कोई गैस्ट्राइटिस की वॉमिटिंग्स नहीं है. ऐसा कहना भी पूछना भी थोड़ा सा गलत है, परंतु हमने कहा ये है करो. आधी रात को 1:30 बजे मेडिकल शॉप से हम खुद जाके वो किसी को भेज के वो लेके आए, किट होती है उसकी, एक यूरिन टेस्ट. सो नियम, धारणाएं, मर्यादाएं बहुत बहुत जरूरी है. वही वही बहुत सारी चीजें आपको अंदर ही अंदर समा लेनी पड़ती है, जो कुछ दिख रहा है. हम एक सेंटर पर गए थे, वहां पे बड़ी बहन जी पहले दिन थे जिन्होंने मुरली सुनाई, दूसरे दिन वो बड़ी बहन जी कहीं चले गए, तो छोटी बहन जी मुरली सुना रही थी. हम भी बैठे क्लास में, तो वो छोटी बहन जी मुरलियों की जो पॉइंट्स आ रही है उस पे अपनी बड़ी बहन जी की पर कमेंट्स कर रही है. उसमें मोह की बात आ रही है, वो कह रही है देखा जैसे हमारी बड़ी बहन जी. अब वो सभा बैठी है 100 लोगों की, उसमें वो ये कह रही है, तो ये क्या सर्विस है? चलो होगा, उसमें अवगुण है बड़ी बहन जी में, बहुत सारे विकार है, मोह है, सब है, पर किसके सामने कहा जा रहा है? हमको एकदम ऐसा शॉक लगा वो सुनकर, ये बहन क्या कह रही है. वो स्टूडेंट्स बेचारे, कोई उसमें नया होगा, किसका अभी अभी कोर्स हुआ होगा, उसको क्या इम्प्रेशन पड़ेगा उसके ऊपर. हमारे अंदर आंतरिक कितना भी कलह हो, अंतर कलह, वो बाहर के स्टूडेंट्स के सामने नहीं दिखना चाहिए. उनको हमेशा यही लगे हम सब एक है, हम क्यों एक दूसरे की ग्लानी करें, क्यों है, ठीक है रहने दो. इतनी ग्लानी करते हैं, इतनी ग्लानी करते हैं एक दूसरे की. हमारी बड़ी बहन ऐसी है, हमारी बड़ी बहन वैसी है, हमारे सेंटर में ऐसा ही है, हमारे सेंटर में वैसा ही है. मधुबन में, मधुबन में सबकी दृष्टि खराब है, ऐसे भी बोलते हुए हमने देखा है. मधुबन की ग्लानी, मधुबन निवासियों की ग्लानी, पर हमने ऐसी भी बहने देखी है इतनी योग युक्त कि कभी उनके मुख से कुछ नहीं सुना. मधुबन में आते हैं बराबर अपना ज्ञान योग सब करके अच्छा अनुभव करके चले जाते, जिनको ज्ञान योग में इंटरेस्ट है, जिनको नहीं है वो बस भाइयों के साथ घूमती रहती है इधर उधर, कभी यहां जाएगी कभी वहां जाएगी, कभी वहां जाएगी. मधुबन में आए बाबा से मिलने और बाबा से मिलना ही नहीं, व्यर्थ की बातों में लग गए 10 दिन 5 दिन 7 दिन, इधर उधर, इधर पिकनिक उधर पिकनिक कर करके चलो. एक ग्रुप था एक बार कहीं से आया, एक सेंटर से दूसरे सेंटर गया, रिट्रीट सेंटर योग करने के लिए, भट्टी करने के लिए, भाइयों का 10 भाइयों का. तो वो भाइयों भाई पहुंचे, पहले दिन योग किया 1 घंटा और दूसरे दिन साइट सीइंग के लिए गए, पूरा दिन उसमें चला गया. दूसरा दिन किसी ने कहा और एक नई जगह है यहाँ पर, वहां जाओ बहुत अच्छी जगह है, वहां गए और फिर रात में 1 घंटा योग किया, दूसरे दिन घर, हो गई 2 दिन की योग भट्टी. ये कोई लक्ष्य नहीं है. वैसे ही मधुबन में जाना अर्थात शक्ति से भरना है. इतनी ग्लानी, कभी कभी तो ओपीडी में आके वो छोड़ के दूसरा ही बताना चालू कर देती है. गुंड्यांची जत्रा, ये शब्द यूज किया एक बहन ने, स्वयं को बचाना है। यज्ञ में आज इतना व्यर्थ है, इतना व्यर्थ है। अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी गलत है। यज्ञ की चार स्टेजेस, कई लोग कहते सतो रजो तमो, उनको क्यों नहीं देख रहे आप? दादिया दीदिया इन सब को देखो, ये तो हमने कुछ हमने ऐसी 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 बहनों को देखी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल, बहुत पावरफुल, ऐसी योग युक्त। हमारी क्लास में सुबह सुबह कुछ कुछ हर बार हर दिन नई नई बहनें आती है, अपना अनुभव शेयर करती है। पानीपत की सुनीता बहन, अरे बाप रे, ऐसी स्थिति इतनी श्रेष्ठ है। सुमन बहन लखनऊ के, इतनी अच्छी स्थिति है इनकी, केवल तपस्या तपस्या और ज्ञान योग पर ही ध्यान है सारा, और उनके सेंटरों पे सेवा स्वतः ही होती रहती है, स्वतः ही होती रहती है, कुछ करने की जरूरत नहीं उनको। वो तो एक जगह हम गए थे, वो बहन बस बैठी है, सब माताएं अपने आप ही कर रही है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम है उसको, मतलब वो सब अपने आप हो रहा है, बस एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के स्मार्ट वर्क। तो ऐसी भी स्थिति है। जैसी दृष्टि, अगर हम ये देखें कि व्यर्थ है, आज ये हमने ये जो शब्द कहा ये भी पहली बार ही कहा होगा कि यहाँ व्यर्थ बहुत है यज्ञ में, ऐसा मुझे नहीं लगता, मैंने इसके पहले भी कभी कहा है, ये सभा आज ऐसी है इसके लिए ये एक शब्द निकल गया, बाकी हमको तो कहीं व्यर्थ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमारा पूरा समय ज्ञान योग तपस्या में बीतता है और सेवा पेशेंस, व्यर्थ है ही नहीं। हम कभी पांडव भवन में वहां चेयर डाल के कभी नहीं बैठते, देखते हुए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बैठते हैं ना वहां, देखा होगा कोई बहन थोड़ी 10 दिन ज्यादा रुक गई, क्यों रुकी, कहां से है? सेंटर कौन सा है, कोई गड़बड़ हो तो नहीं हुई, ये सारा व्यर्थ चालू हो जाता है। ये सब चीजें हमको करनी नहीं है, हम इसके लिए आए नहीं है यज्ञ में, हम शक्तिशाली बनने के लिए आए, इस सब से हमको क्या, फोकस केवल अपने लक्ष्य की ओर, बस मैं इसके लिए आया हूं, मैं ये करूंगा, मुझे यहां की बातें, अरे जो सास होती है ना, बहू और सास, कितनी भी बुरी सास हो, दुष्ट से दुष्ट, फिर भी वो बहू अपने घर की बातें बाहर नहीं लेके जाती, अच्छी कुलीन घर की, अच्छे घर की, ऊंचे घर की बहू होगी ना, कभी अपने घर की बातें बाहर नहीं लेके जाती। और हमने कई बहनों को ऐसे इतना बोल्डली बात करते देखा यज्ञ के अगेंस्ट, अज्ञानियों के सामने, जैसे वो उनके साथ मिली हुई है, अज्ञानियों के साथ, अज्ञानियों के सामने कितनी बड़ी डिससर्विस है। अरे एक आत्मा को तैयार करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, और डिससर्विस तुरंत, कितना उस आत्मा के पीछे पड़ना पड़ता है, कितने प्रोग्राम में बुलाओ, क्या करो क्या करो क्या करो, और डिससर्विस कैसे हो जाती है तुरंत। एक भाई इतनी सर्विस करता था, हमको याद है, साइकिल से वो गया था 1200 किलोमीटर मधुबन, इतना नशा था उसको, और जाते जाते ज्ञान पर्ची बांटते बांटते, बाद में पता नहीं सेंटर में ऐसा डिस्टर्ब हो गया कि ज्ञान ही छोड़ दिया, अब है ही नहीं ज्ञान में। उसका सत्कार दादी प्रकाश मणि के द्वारा हुआ था स्टेज पर, साइकिल चलाते हुए गया था, इतनी लंबी यात्रा, पर्चे बांटते बांटते, एथलीट था वो, खिलाड़ी, बाद में ज्ञान ही छोड़ दिया, डिस्टर्ब हो गया। सब जैसी टीचर होगी ना, टीचर कहो जैसा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वैसा ही वो डिपार्टमेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, हम देखते हैं फार्मेसी ले लो, हमारे इधर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए, अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ज्ञान और योग में इंटरेस्ट है ना, तो पूरे स्टूडेंट्स को ज्ञान होगा। अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ज्ञान योग में इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई दूसरे चीजों में इंटरेस्ट है, तो सारे स्टूडेंट्स को भी वैसा ही इंटरेस्ट, जैसे आप वैसे स्टूडेंट। आपको यदि व्यर्थ में इंटरेस्ट है तो सारे स्टूडेंट्स को व्यर्थ में इंटरेस्ट होगा। सब कुछ हमारे ऊपर है, इंटेंस सेल्फ चेकिंग की आवश्यकता है अंदर जाके डेली इंटेंस एकदम चेकिंग, क्योंकि इतने उदाहरण है सारे पढ़े हुए, ایک بہن آئی تھی ابھی ہمارے پاس اتنی بڑی فائل لے کے, ٹھیک ہے, سنسار کے بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھا کے آئی تھی, ایک سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھائی تھی. اس سائیکیٹرسٹ نے اس کا ڈائگنوسس کیا تھا سپریس سیکشوئل ڈیزائر. برہما کماری بہن کا ڈائگنوسس سپریسڈ ارتھات دبے ہوئی کام واسنا, سپریس سیکشوئل ڈیزائر, یہ اس کا ڈائگنوسس لکھا تھا وہاں پر ایک سمرپت بہن کے لیے. اس کے جو بھی سمٹمس ہو گئے, ہاں سچ بالکل, کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ سنسار کا واتاورن ویسا ہی ہے. لوگ گیان میں کیسے آ جاتے, کوئی ایسے تو بہت کم ہے جو بہت سمجھ کے آئے, ماں باپ چل رہے آ گئے, کہاں سمجھ میں آیا, دھیرے دھیرے بہن بن گئے, یہ سب کر دیا کر دیا, گیان کی گہرائی میں گئے نہیں. اور پھر پرانے وہ کالج کے سنسکار, ٹی وی, یہ موبائل, یہ انٹرنیٹ, یہ موویز, ہر ایک کے موبائل میں کلک کرو مووی تیار. کیا ہے آج کل, سب کے پاس نیٹ ہے, سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے, سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے, جس کو چاہے اس کو فون کرتے رہ دیں گے, اور اس کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. کیونکہ کئی بہنیں ایسی ہیں ان کا فون کا ریچارج بھی وہ دوسرا بھائی کرے گا, سینٹر کو پیسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں, اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. کیا کہتے ہیں, ہاں ہاں بربر ہے وہ, ڈاکٹروں کا بربر ہے, کیونکہ ڈاکٹروں کو تو وہی دکھتا ہے نا, یہ دمن ہو رہا ہے. ہم نے آج صبح چار سٹیجز بتائی, وہ پوری کہاں کی, وہ اداتیکرن اس کا ٹرانسفارمیشن کیا ہی نہیں, تو وہ تو نکلے گا, کہیں نہ کہیں سے نکلنا ہی ہے اس کو. ہاں اچھا وہ کہتے ہیں ڈاکٹرز, ہاں تو وہ ایک دوسری بات ہے کہ ڈاکٹرز کا بہت بار وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ لکشن ان کو ان کے سامنے ایسے بتائے کہ وہ اس ڈائگنوسس کی اور ان کو لے کے جاتا ہے. وہ بتایا کہ اس نے ہم سے پوچھا نا, اس نے, وہ ڈاکٹر کوئی اپنے من سے تو ڈائگنوسس کرتا نہیں, سامنے والا جیسے جیسے بتاتے جاتا ہے, جیسے جیسے وہ اس حساب سے وہ اپنا ڈائگنوسس بناتا ہے. ہم ایک طرف تو کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ویکتی میں وہ چیزیں نہیں ہیں, پرنتو اس ڈاکٹر کو لگ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تھوڑی تو ہوگی, اس کے سوا وہ نہیں لکھ سکتا, تھوڑی تو ہوگی, کیونکہ سب سائنٹیفک ہے ڈاکٹری میں, سب کچھ سائنٹیفک, جیسا پیشنٹ بولے گا اسی آدھار سے ہوتا ہے سارا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر ہر ایک کا لکھتا ہوتا, ہر ایک کا تھوڑی لکھتا ہے, نہیں لکھتا ہے, ہے. اور کچھ کچھ تو خود ہی بولتی ہے, ہم کو اچھا لگتا ہے کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو ڈائریکٹ بولتے ہیں, بولتے ہیں اسے. اس کے لیے ایک ہی, اس بھٹی میں ہم چاہیں گے ایک ہی پارٹ, وہ ہے گیان کا چنتن, گہرا چنتن. جب تک یہ نہیں ہوگا نا وہ ہلچل ہوتی رہے گی. اس گیان کو سمجھو کیا ہے, اور بدھی گیان سے جب بھری رہے گی تو ویرتھ نہیں آئے گا, یہ ویویل سپیرٹ اور یہ وہ کچھ سنکلپ نہیں آئیں گے, ستی ستھتی شکتیشالی ہو جائے گی. بس یہ کام ہم کو کرنا ہے, پورا کرتے. ہاں یہ بھی ہے کہ پرشاد کے لیے ٹائم نہیں, ٹائم چرانا پڑے گا, چرانا پڑے گا, ایسے استھان پر ہی چرانا پڑے گا, ٹائم کی چوری کرنی پڑے گی. پانچ منٹ بھی مل جائے, ہم نے بہت بار ایسا کیا ہے کہ ابھی سیریس پیشنٹ سامنے ہے, اس کا سب کچھ کر رہے, اس کے بیچ میں بھی ٹائم ہوتا ہے پانچ منٹ, اس میں ہم کچھ تو گیان کا کچھ چنتن کر لیتے. کئی بہنیں ہمارے پاس آتی ہے, اتنی بھیڑ او پی ڈی میں بھینکر, کبھی کبھی سو سو بہنیں, سو سو پیشنٹس پورے باہر, اور اتنا پورا, ایک بہن ایک دم ڈائریکٹ مجھے بات کرنی ہے, بولے آپ گیان کا چنتن کب کرتے ہو, سیدھا اندر آ کے پوچھا اس نے. ہم نے کہا ایک پیشنٹ اور دو پیشنٹ جب جاتا ہے نا, اس کے بیچ کا جو ٹائم ہے نا تب. یہ تو ایسے ہی کہا اس کو, کیونکہ وہ ایک دم آ کے پوچھ لیا اس نے. تو ٹائم کو چرانا ہے, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے, تھوڑا بھی سمے ملے نا اس کو یوگ کا پریوگ یا گیان, یہ دو ہی چیزیں بس. تو سیوا جو ہے سوتہ ہی ہوتی رہتی ہے, اپنے آپ, ہم کو کرنا ہی نہیں پڑتا ہے, اپنے آپ ہوگی. हम थकते इसलिए है, व्यर्थ हमें थकाता है, सेवा कभी नहीं थकाती है, व्यर्थ थकाता है। व्यर्थ के लिए बहुत टाइम है सबके पास। दो बहनें बैठ जाए तो अपने सेंटरों की चर्चा करते करते रात भी गुजर जाएगी कि हमने ऐसा, हमारी बहन ने ऐसा किया, तुम्हारी बहन ने वैसा किया, हमारी बहन ऐसी है, हमारी बहन वैसी है, हमारी इसने ऐसी करती है, वो वैसी करती है, यहां ये हुआ, वहां वो हुआ, व्यर्थ। श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है, इसको छाटना है। ये श्रीमत, ये मनमत, ये परमत, ये छाटना, सेग्रीगेट, अलग अलग कर देना, यही जीवन है, ब्रह्मा कुमारी जीवन है। ये श्रीमत नहीं है, ये परमत है, ये श्रीमत है, इसको पकड़ना, कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ो। ओम शांति। भोजन हमारा थोड़ा प्राइवेट टॉपिक है अगली बार। हाँ वो तो मीरा बहन जी पहले से ही पावरफुल है, हमारी पुरानी पेशेंट है देखो भोजन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन और बहुत आसक्ति वाला जो भोजन है ना, हमने सुबह चक्र गिनाए थे, नीचे का जो चक्र है वो व्यक्तियों का जीवन भोजन के इर्द गिर्द घूमते रहता है, बस क्या खाऊं, कुछ है क्या, ये सब्जी कहाँ से बनी, एक्स्ट्रा है क्या, हमारी थाली में एक भी, मधुबन में एक भी चीज दूसरे की थाली में नहीं दिखी, कहां से लाई कोई भी नई सब्जी दिखी दूसरे की थाली में अच्छा ये सेंटर के में। सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट से भी पहले खुद पे ही काम करना है, बस स्वयं के व्यर्थ निगेटिव अपवित्रता इस पर ही काम करना है। सेंटर में सेवा हो ना हो ये सब बात की बातें हैं, पहले खुद की सेवा, बाद में विश्व की सेवा। अपनी स्थिति डाउन है और सेंटर की सेवा नहीं हो सकती, होगी ऊपर ऊपर, संख्या बढ़ेगी खाली, क्वालिटी नहीं होगी। हमारा लक्ष्य क्वांटिटी नहीं है, केवल क्वालिटी है। जो ऑलरेडी है वहां पर हमारे पास भाई बहन है, उनको ही पालना देनी है, उनको ही शक्तिशाली बनाना है। और योग भट्टी का प्रोग्राम बनाना मतलब क्या, योग एक दो क्लास और योग, खाली ये योग भट्टी नहीं है, ये तो एक मिलन है, स्नेह मिलन जिसको कहे, और जिसमें चर्चा हो रही है ज्ञान की। योग भट्टी हम अपनी अपनी बनाए, जरूरी नहीं है कि हम इनवाइट करें सारे लोग उसमें आ जाए, ये तो बड़े संगठन में ठीक है, पर जो छोटा सा सेंटर है जिसमें 10 भाई बहन है, सुबह आते चार शाम को आते, कैसे करें वहां योग भट्टी, बड़ों को बुला नहीं सकते, कौन आएगा वहां, कोई आएगा नहीं। तो वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए एक उदाहरण हम देंगे, हम एक छोटी जगह गए थे एक बार कोकण एरिया में, वहां पर उस सेंटर में एक उस बहन से हम मिले, उसकी स्थिति इतनी अच्छी थी उस बहन की, फिर हम सुबह क्लास में गए, एक ही स्टूडेंट सामने बैठा था, बस पूरी क्लास में एक ही स्टूडेंट। तो हमको थोड़ा आश्चर्य लगा कि इतना हॉल है पर स्टूडेंट एक ही है। तो उस बहन ने कहा यहां पर जो है कितनी भी सेवा करो ज्यादा लोग आते नहीं है, एक या दो आते हैं बस। परंतु उस बहन ने कहा हमको एक बहुत अच्छी बात कही, इससे पहले वो एक बड़े सेंटर पर थी, वहां इतनी सेवाएं थी, इतनी सेवाएं थी, और अभी कुछ सालों से वो यहाँ है ये सेंटर पे, जहां पे एक या दो स्टूडेंट है, कोर्स दिन भर कईयों को कराते हैं, परंतु कोकण एरिया है तो वहां तो लोगों को पता है ये नॉनवेज छोड़ना पड़ता है, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में जाना, कोर्स करते हैं और चले जाते हैं, वापस रेगुलर नहीं हो पाते। तो उस बहन ने कहा मुझे, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार कर लिया है और अपना सारा समय वो ज्ञान और योग में बिताती है। सेवाएं उसने बहुत की बड़े सेंटरों पर, हर प्रकार की सेवा की, परंतु अभी क्योंकि बाबा ने यहां भेजा और यहां अभी जो भी है उसको मैंने स्वीकार कर लिया। सेवाएं तो अभी भी करते हैं पर लोग आते नहीं है इतने, परंतु इस समय को उसने ये सोचा कि मैं इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार करती हूं। ये संकल्प लिया और दिन भर अव्यक्त वाणियों का चिंतन, ज्ञान का मनन ये वो करती और चुप मौन, और देखा हमने कितनी शांत स्वरूप उसकी स्थिति थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसी जगह हम जाएंगे जहां कितना भी कुछ करो कुछ नहीं होता है, लोग आते ही नहीं है, कोर्स कितना कराओ नहीं होता है। परंतु हमने एक और चीज देखी, उस सेंटर का वायुमंडल बहुत पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली वायुमंडल था सेंटर का, वो हमको दिखाई दिया। हमें भय, किसका भय? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। हमने जो देखा आए बराबर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वाइब्रेशंस है। हमने ये भी पूछा कि इस स्थान पर पहले क्या था, तो किसी ने कहा यहाँ जंगल था, पर हमको लगता है हजारों साल पहले या कुछ सालों पहले यहाँ पर कुछ तपस्वी आत्माओं का निवास स्थान होगा, कोई आश्रम होगा, किसी गुरुकुल होगा या कोई आश्रम होगा द्वापर युग में, द्वापर युग में उसके कारण ही यहाँ के वाइब्रेशंस में एक अलौकिक सी शांति है, एक अजीब सी शांति खींचने वाली, बिल्कुल वो प्रभाव यहाँ पर है इस वातावरण में। ढाई तीन, हाँ आपने आप बता रहे थे यहाँ का। लास्ट क्वेश्चन फिर पूरा। हाँ, ये फिर भी वही तर्क वाला प्रश्न है। चलो हम कहे कि 40 जन्म के कटे बाकी बचे, अब नेक्स्ट व्हाट? हम कहेंगे 42 जन्म के कटे बाकी नहीं कटे, नेक्स्ट व्हाट? भोजन कभी और। तो ये भट्टी आज यहाँ पूरी हो रही है। कर्म भोगी है और अच्छा है ना, इस रूप से आ रही है। एक तो किसी आत्मा के द्वारा आ सकती है, एक प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा आ सकती है, एक परिस्थिति के द्वारा आ सकती है, और चौथा बीमारी के द्वारा। तो हिसाब किताब चार रीति से चुकते होते हैं। हमारी शरीर से हो रही है तो बहुत अच्छा है, व्यक्ति से आ जाए तो और ज्यादा मुश्किल। शरीर बहुत अच्छा है पर कोई व्यक्ति तंग करे दिन रात तो ये तो इस बीमारी से भी खतरनाक है। वो परिस्थिति ऐसी आ जाए, एक गई दूसरी, दूसरी गई तीसरी, वो और ज्यादा खतरनाक है। प्राकृतिक आपदा आ जाए, पैर ही टूट जाए, हाथ ही टूट जाए, उससे तो ये छोटी मोटी बीमारियां ठीक है। एक्सेप्ट, प्रेम से इस बीमारी को स्वीकार कर लो जो भी बीमारी आए। ओम शांति।
शांति। प्रोग्राम ही ऐसे बना, क्लास के भाई बहने नहीं रहे, हम लोग थोड़ी सी बहने हैं। आदरणीय सचिन भाई जी ने कन्नड़ में कहावत है ना, मूर्ति चिकित्र कीर्ति दौड़ दो, हिंदी में क्या कहते, क्या कीर्तिमान, हिंदी में भी होगा। जैसे हम लोग बहने हैं, टीचर्स हैं, एक कुमार भाई हमारे आगे बैठा है, ऐसे महसूस होने नहीं दिया है ना। कोई बुजुर्ग भीष्म पितामह आगे बैठे हुए, हमने मेडिटेशन हॉल में पांडव भवन में बड़ी दादी जी के द्वारा भट्टी में ऐसे क्लासेस सुने, पवित्रता की गुह्यता, छोटी छोटी नियम संयम, आजकल वो सिखाने वाले कोई नहीं, बट्टी के क्लासेस भी अलग ढंग से होते हैं ज्ञान की गुह्यता पर, जो जरूरी छोटी छोटी बातें जैसे दादी प्रकाशमणि के द्वारा हम बट्टियों में सुनते थे, फर्स्ट डे बीच में फिर लास्ट में दादी क्लास कराती थी, चंद्रमणि दादी भी। तो आप आएंगे 2 मिनट के लिए? तो हम भूल गए, कोई कुमार भाई हमारे आगे बैठे हैं, ऐसे सचिन भाई जी ने अनुभव कराया इतने परिपक्व स्थिति के द्वारा। सिर्फ ज्ञान ज्ञान नहीं है, गुह्यता से उन बातों के अनुभव अपने जीवन में धारण करके, साथ साथ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के कारण इनको बातें बताना भी सहज होता है बहनों के आगे, डबल नॉलेज है इस कारण से। तो कैसे हम शब्दों के द्वारा आपका धन्यवाद करें समझ में नहीं आ रहा है।
एक बात हम कहना चाहेंगे कि यदि जो भी हमने कहा उस वजह से कोई बात किसी को अच्छी ना लगी हो, कोई बात किसी को गलत लगी हो और कोई बात लगा हो कि ये नहीं कहनी चाहिए थी और कोई बात ऐसा लगा कि इस व्यक्ति ने ये नहीं बोलना चाहिए, इस तरह की बातें, तो हम कहेंगे कि अपना छोटा भाई समझकर या छोटा कुमार समझकर या किसी का हृदय विदीर्ण हुआ होगा हमारी बातें सुनकर तो छोटा समझकर या भाई समझकर हमको माफ कर देना। ओम शांति। कैंसर के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कैंसर के लिए तो ऐसा कुछ ये नहीं है प्रिकॉशंस, खाली वही है हेल्दी डाइट, वॉकिंग। हम देखते हैं वॉकिंग बहुत कम कर दी है बहने,
शुगर
मोटापा जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ता है। सभी सभी ऑल ओवरऑल जो हमारा इम्प्रेशन है ब्रह्मा कुमारियों का वो है कि एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा कमी है, वॉकिंग की बहुत ज्यादा कमी है, ये दो चीजें तो है ही है। और डाइट में कंट्रोल नहीं है, डाइट में एकदम अनकंट्रोल्ड है। अच्छा बना तो इतना ज्यादा खा लेती है और नहीं तो फिर उनको सब अच्छा अच्छा चाहिए बिल्कुल, जिसमें वह जब जो भी जब तक तेल से नहीं जाती चीज वो उनको टेस्टी ही नहीं लगती है। सफेद चावल तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं, पुलाव चाहिए जिसमें बहुत तेल हो, बहुत मसाले हो, बहुत कुछ डाला हुआ हो, ऐसा गरिष्ठ भोजन, और यही धीरे धीरे फिर बीमारियों को जन्म देता है। डाइट, वॉकिंग, एक्सरसाइज, हो सके तो थोड़ा प्राणायाम, हो सके तो प्राणायाम, ठीक हो ये सारी चीजें। और एक इम्पोर्टेंट, इसके बारे में नॉलेज, डाइट के बारे में, फूड के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, ये थोड़ा थोड़ा करते रहना है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ होते रहता है। अच्छा चलो हो गया, उसके बाद तो फिर तुरंत इलाज कर लेना उसका, जो सुबह भी कहा था, कमजोरी, बीमारी, बुढ़ापा।